ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं बहुत अच्छा लेख है। सेठ जी की तो एक एक बातें उपनिषदों के समान है। प्रेम के विषय में कम बोलते थे, आज उसके विषय में बोल रहे हैं। सभी गोपियों में एक जैसा भगवान के प्रति प्रेम नहीं था, सब में भिन्न भिन्न प्रकार का भाव था, अतः भिन्न भिन्न प्रकार का ही प्रेम था। कई श्रेणियां थी। एक गोपी कहती है, चलो सखी वा ठोर को जहां मिले ब्रजराज, गोरस बेचन हरि मिलन एक पंथ दुई काज। सखी वहां चलो ना जहां भगवान श्री कृष्ण है, अपने दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे, दही भी बिक जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। ये जो प्रेम है ये साधारण श्रेणी का है, अर्थात दही बेचने के समान भगवान का दर्शन है। ये एक बात। दूसरी बात, दूसरी गोपी कहती है, ए सखी सुनो, भगवान की बंसी कितनी सुंदर लगती है, मैं तो अपना सब काम का छोड़कर दौड़ी दौड़ी आई, जैसे गाय अपने बछड़े के लिए दौड़ती है ना, ऐसे मैं दौड़ी दौड़ी आई। ये प्रेम अच्छा है। कोई ऐसी थी कि भगवान के प्रेम में हर समय मुग्ध रहती थी, बाहर का ज्ञान भी नहीं रहता था, ये और भी ऊंची बात है। ऐसे यदि आप प्रेम की श्रेणियों को देखते जाओगे तो इनमें सबसे ऊंचा प्रेम राधा जी का प्रेम मिलेगा। राधा जी तो रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी रहती थी। सबसे ज्यादा प्रशंसा श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की बताई गई है। क्यों? कृष्ण की सारी चेष्टा राधा जी की प्रसन्नता के लिए थी और राधा जी की सारी चेष्टा भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए थी। मानो भगवान के प्रेम को राधा जी ने अपने लिए नहीं भगवान को ही समर्पित किया और राधा जी के प्रेम को भगवान ने अपने लिए नहीं राधा जी को ही समर्पित किया। राधा जी भगवान की लीला प्रेम को देखकर उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहती थी। इधर कृष्ण राधा जी को प्रसन्न करके राधा जी की प्रसन्नता में प्रसन्न रहते थे, अपनी प्रसन्नता भी भूल गए। इसलिए दोनों ही प्रेम की मूर्ति थे, दिखने में दो पर होने में एक थे। इनका प्रेम उच्च श्रेणी का था। भगवान में प्रेम होना चाहिए। हम तो कहते हैं प्रेम चाहे पशु पक्षी से ही क्यों न करो, पर विशुद्ध प्रेम होना चाहिए, पूर्ण प्रेम होना चाहिए। पूर्ण प्रेम या विशुद्ध प्रेम में कमी क्या रह जाती है? स्वार्थ। स्वार्थ के लिए जो किया जाता है वो प्रेम नहीं होता है, वो आसक्ति होती है। प्रेम का असली तत्व भगवान जानते हैं, थोड़ा बहुत भगवान के भक्त भी जानते हैं, पर वे भी भगवान की कृपा से ही जानते हैं। प्रेम के सम्मुख कोई चीज नहीं लगती, भगवान प्रेम में बिक जाते हैं। भगवान को खरीदना चाहो तो उनका मूल्य प्रेम है। भगवान का भक्त भगवान को बेचना चाहे तो भगवान हंसते हंसते बिक जाते हैं। भगवान का भक्त भगवान को बेचना चाहे तो हंसते हंसते बिक जाते हैं। प्रेम भगवान से बढ़कर हुआ क्योंकि उसके मूल्य में भगवान बिक जाते हैं। पारस का कोई मूल्य हो सकता है क्या? पारस का क्या मूल्य होगा? क्योंकि पारस को आप किससे खरीदोगे, किससे खरीदोगे? रुपए से खरीदोगे? कितना ही रुपया दे दो पारस का मूल्य तो नहीं आया। ये जो बात कही जाती है कि भगवान का भक्त भगवान का नाम भगवान का प्रेम ये भगवान से बढ़कर है, ये तो एक विनोद में कही जाती है। क्योंकि भक्त हो चाहे भगवान का नाम हो चाहे भगवान का प्रेम हो, है तो ये भगवान को लेकर ही ना। इसलिए भगवान से बढ़कर ये तो एक विनोद की बात है, भगवान को राजी करने की बात है, या भगवान के भक्त नाम और प्रेम की विशेष महत्ता बता दो, पर भगवान से बढ़कर कैसे, भगवान को लेकर ही तू है। राम भगत हित नर्तन उधारी, सही संकट की साधु सुखारी, नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल भाषा। इसमें भगवान के नाम को ऊंचा बताया, भक्त के हित के लिए भगवान को मनुष्य का रूप धारण करना पड़ा, अनेक संकट सहे, लेकिन भगवान के नाम की महिमा देखो। नाम को जपने से मनुष्य बिना प्रयास के ही भक्त हो जाता है। एक राम तापस्य तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने तो तपस्विनी स्त्री का उद्धार किया, नाम ने करोड़ों की बुद्धि का सुधार किया। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, रामन सकई नाम गुण गाई। राम नाम की महिमा भगवान भी नहीं कह सकते। तो नाम की बात तो ठीक है, किंतु यहां प्रकरण प्रेम का है। भगवत प्रेम में नाम सहायक है, प्रेम का उत्पादक नाम है। नाम लेने से प्रेम उत्पन्न होता है। ये जो भगवान के नाम से पाप आदि का नाश करना, ये तो बहुत मामूली बात है। जैसे खेत को सूड किया जाता है, खेत को एकदम लेवल में किया, उसमें कूड़ा कचरा हटाया, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तो उसमें खेती करना होता है। ऐसे ही पाप का नाश कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान का भजन करने से भगवान में प्रेम होता है, ये बड़ी बात है। इसलिए भगवान से बढ़कर भगवान के महिमा की बात भी आती है। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से बढ़कर राम के दास है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, राम तो समुद्र के समान है, और संत होते हैं वो बदल के समान होते हैं। बादल जैसे वर्षा करते हैं, ऐसे भगवान के भक्त भगवान के प्रेम की वर्षा करते हैं। उन्हें देखकर लोग प्रसन्न हो जाते हैं, प्रसन्न होना ही चाहिए। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भगवान के भक्त को देखकर मुग्ध होना ही चाहिए। जिज्ञासु मुग्ध हो जाते हैं, जैसे मोर पपीहे बादलों को देखकर मुग्ध हो जाते हैं, इससे भी ज्यादा जिज्ञासु प्रसन्न होते हैं भगवान को देखकर। वे देखते हैं आनंद प्रेम की वर्षा हो रही है। हरि चंदन के वृक्ष के समान है, भक्त वायु के समान है। भगवान के भक्त सबको विज्ञानानंद घन बना देते हैं, ईश्वर के भक्त सबको ईश्वरमय बना देते हैं। भक्तों का संग प्रेम में सहायक होता है, प्रेम प्रकट होता है प्रेमियों के साथ में रहने से और भगवान के नाम जपने से। भगवान की भक्ति का फल प्रेम है, भगवान में प्रेम होवे ये असली भक्ति है। रुपयों में सुख बुद्धि होने से रुपयों में हमारा प्रेम होता है, ऐसे आनंदमय भगवान आनंद की मूर्ति है, आनंदमय है। उनके दर्शन भाषण में जो आनंद है उस आनंद की तुलना में सारी दुनिया के आनंद को इकट्ठा कर लो तो भी जो आनंद के सागर है उस आनंद के सागर की छाया के मुकाबले में हो ही नहीं सकता है। इस बात पर आपको विश्वास हो जाना चाहिए। हम तो जोर देकर के कहते हैं कि ये बात यदि आपके समझ में आ जाए कि संसार के सब आनंद से बढ़कर कितना ही गुना बढ़कर भगवान का आनंद है तो वह प्रेम में पागल हो सकता है, प्रेम में पागल हो जाए। संसार में प्रेम से बढ़कर कोई वस्तु नहीं। भगवान में प्रेम कैसे हो, भगवान क्या चीज है, इस बात का जितना अधिक ज्ञान होता चला जाता है उतना ही स्वतः ही प्रेम होता ही चला जाता है। जैसे किसी बर्तन को ज्यों ज्यों रगड़ते हैं त्यों त्यों उसमें प्रकाश उज्ज्वलता स्वच्छता अपने आप पैदा होती है। तांबा को बर्तन में पुराणो खूब काट खाएड़ो बिने एक बार छाछ रगड़े नींबू रगड़े बार बार बिन साफ करे अपने आप ही बिन चमक आवे। ऐसे ही जितना जितना भगवान का ज्ञान होता चला जाता है उतना उतना उसमें प्रेम प्रकट होता ही रहता है। जैसे पुराने बर्तन को साफ करते हैं तो उसमें स्वच्छता उज्ज्वलता अपने आप प्रकट होती है। कोई हम उसमें उज्ज्वलता डालते नहीं है बर्तन में, वो अपने आप ही होता है। भगवान के गुण प्रभाव तत्व जानने से इतना प्रेम हो जाता है कि उसको संसार एकदम फीका फीका मालूम देता है, वो एक क्षण भी भगवान को भूल नहीं सकता। आप थोड़ी देर भगवान का ध्यान करो, मन लगाकर करो, जब उसमें रस आए उसके बाद आप आंख खोल करके संसार को देखो, आपको संसार देखने का मन नहीं करेगा, इतना गंदा लगेगा। ध्यान करो मन ही मन में, फिर आंख खोल करके संसार सांस ले हो तो संसार के वायुमंडल में दुर्गंध आएगी। उसी वायुमंडल में बैठे हैं लेकिन ध्यान के समय में बैठे हैं तो वायु में दुर्गंध नहीं आएगी, और ध्यान छोड़ के देखोगे तो वायु में दुर्गंध आएगी। एक गरीब आदमी था, महादरिद्री था, एक समय उसके घर पर साधु पहुंच गया। साधु जोर से चिल्लाया नारायण हरि, वो भिक्षा के लिए गया। वो गरीब बाहर आया, उनके चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा, कहा महाराज इतना गरीब हूं कि 3 दिन से भूखा हूं, आपको कहां से दूं, मेरे समान इस संसार में कोई दुखी नहीं है, अनाथ नहीं है, आप तो जगह जगह खूब घूमते हो, महाराज आपको कोई मेरे जैसा दुखी दिखाई दिया। महात्मा को दया आई, महात्मा ने कहा चलो भाई अंदर बैठ के बात करेंगे, अपना दुख दर्द है इस प्रकार से रो चिल्ला करके सुनाया नहीं जाता है, चलो अंदर बात करें। महात्मा जी अंदर गए, कुटिया में गए, वहां चटनी पीसने का पत्थर उठा करके पूछा कि भाई ये क्या चीज है। उसने उत्तर दिया महाराज ये पत्थर है। उसे उठा ऊपर पूछा, ये क्या है? कहा कि महाराज ये भी पत्थर है। महात्मा ने कहा सोच के बताओ क्या है। कि महाराज ये पत्थर है, आपको पता ही है, इसकी चटनी लगी हुई है, तो नीचे लोडी है, इसमें घिसते हैं, तो ये तो पत्थर है। महात्मा जी ने कहा फिर सोच के कहो। महाराज मेरी तो सोच इतनी थी, ये तो पत्थर है, कोई संदेह नहीं है। महात्मा ने कहा पत्थर नहीं है। उसने कहा महाराज ये क्या बात करते हो, पत्थर ही है। आप कहो तो अड़ोस पड़ोस के सब लोगों को बुला लूं, हजार आदमियों से कहलवा दूं कि ये पत्थर है। महात्मा ने कहा तुम चाहे लाख से कहलवा दो, ये पत्थर नहीं है, मैं नहीं मानता। तुम जानते नहीं, तुम्हारे समान मैंने संसार में किसी धनी आदमी को नहीं देखा है। अरे तुम तो अपनी बात करते हो, तुम चाहो तो सबको धनी बना सकते हो। गरीब ने कहा महाराज मेरी हंसी आप भी उड़ाओगे, मेरे समान कोई कंगला नहीं, मेरे पास कोड़ी तक नहीं, खाने को मेरे पास अन्न नहीं, आप कहते हो तुम्हारे समान कोई धनी नहीं। महात्मा ने कहा कि तुम तुम्हारी मूर्खता से दरिद्री हो, उसका मैं क्या करूं, तुम्हारी मूर्खता से तुम दरिद्री हो, मूर्खता से दुख पा रहे हो, इसको तुम पत्थर मानते हो, पत्थर नहीं है ये पारस है। गरीब आदमी तो सुनते ही आश्चर्य किया, महाराज क्या कह रहे हो, मैं वही कह रहा हूं ये पारस है। महाराज मैं तो इसको केवल पत्थर मान रहा हूं, चाहे जो कुछ कहे, मेरे तो ये है ठीकरों में ही पड़ा रहता है। साधु ने कहा तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे घर में कोई चीज चिमटा तवा कोई है? हाँ है महाराज, लाओ। लाया, छुआया, छुआते ही सोना हो गया। अब क्या कहना कि क्या है ये? महाराज पारस है। तुम संसार को धनी बना सकते हो कि नहीं? अब ये ठीकरों में रखोगे? उसने कहा महाराज अब तो ये मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा लगने लगा, अब पत्थर उसका प्राण हो गया। अरे उसमें तो एक ही गुण है कि वो लोहे को सोना बनाता है, वो पारस किसी लोहे को पारस तो नहीं बनाता ना। महात्मा तो पारस से भी श्रेष्ठ है, वे तो किसी को महात्मा बनाते हैं। क्या वो उस पारस को छोड़ सकता है वो गरीब आदमी? अरे ये तो हमने जड़ चीज बताई है, भगवान जैसी चीज मिल जाए जिसके गुण और प्रभाव की सीमा नहीं है, पारस की तो सीमा आ गई, उसमें कोई सीमा नहीं है, वो मिल जाए वो कितना प्राणों से प्यारा होगा। हम लोग भगवान के तत्व रहस्य को जान जाए तो क्या भगवानों में ही रखता था, उसको कैसे मालूम चला? एक संत के प्रभाव से मालूम चला। इसी प्रकार भगवान के रहस्य प्रभाव को उनके जो प्रेमी भक्त हैं उनसे ही जाना जाता है। इसलिए प्रेमी पुरुषों की महिमा बताई है, उनका संग करना चाहिए। आजकल तो लोग भोगियों का संग करते हैं, नास्तिकों का संग करते हैं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के सत्संग के बराबर स्वर्ग मुक्ति का सुख नहीं हो सकता। जिस सत्संग से भगवान मिल जाए, उनसे प्रेम हो जाए, उसकी महिमा कौन कह सकता है। भगवान ने तो कहा है ऐसे पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुष कैसे मिले, प्रभु की कृपा और महापुरुषों की कृपा से मिलते हैं। कहते हैं भगवान तो सब पर कृपा करते ही है, पर वो तो करते हैं, हम मानते नहीं ना। उस गरीब के घर में पारस तो था ही, उसने पारस को पारस माना भी बड़ी मुश्किल से ना। कैसे माने? थोड़ा अंतःकरण शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध कैसे होगा? भगवान की शरण में जाने से होगा। हम भगवान के शरण क्यों नहीं जाते? भगवान का तत्व नहीं समझते, रहस्य नहीं समझते, प्रभाव नहीं समझते। तो कैसे जाने? कि सत्संग से जानो। सत्संग कैसे मिले? भगवान की कृपा से। सत्संग, भगवान की शरण, भगवान के नाम रूप आज्ञा का पालन, विधान की शरण, इस प्रकार करते करते अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से भगवान में श्रद्धा प्रेम हो जाता है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। यदि बहुत ऊंचे महात्मा न भी मिले तो उन पुरुषों से सत्संग करो जो जिज्ञासु हैं, जो भगवान की तरफ चलने का प्रयत्न करते हैं, और वो भी न मिले तो अच्छे शास्त्रों का अध्ययन करो, संग करो, वो भी सत्संग है। जीवन में सत्संग करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना सत्संग के मनुष्य को होश नहीं आता, सत्संग के बिना मुंह का नाश नहीं होता। जो व्यक्ति सत्संग किया हुआ होता है वो संसार की अकस्मात बदली हुई परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, वो जानता है कि परिस्थिति तो बदलती है। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करता उस व्यक्ति के घर में अचानक कोई मर जाए तो वो पागल हो जाता है, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर होश नहीं है, बेहोशी है। हम तो और भी बात बोलते हैं, हम तो कहते हैं कि जो हम लोगों में नीच से नीच प्राणी है, यदि वो अभी इच्छा करे तो उसका भी भगवान में प्रेम हो सकता है। पशु पक्षियों का भी प्रेम भगवान में हो गया, जैसे काग भुसुंड जी थे, ये कौवा थे, बाली है, सुग्रीव है, हनुमान है, ये वानर थे। बाली ने तो यहां तक मांगा कि नाथ मैं जिस योनि में जन्म लेऊं आपके चरणों में प्रेम हूं। बाली पहले कैसा था? वो भगवान ने खुद ने बाली को फटकारा है, अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुनसठ कन्या समये चारी इनही कुदृष्टि बिलोकई जोई ताई बदे कछु पापन होई। भगवान ने इतना उसको पापी माना। वाल्मीकि रामायण में ये बात आती है, भगवान ने कहा तुम्हें इन बातों का ज्ञान है इसलिए तुम्हारा ये काम नीच है। इतना होते हुए वो भगवान का प्यारा बन गया, भगवान पिघल गए। बाली ने कहा सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी प्रभु अजहु मैं पापी अंतकाल गति तोरी। हे राम जी महाराज सुनिए, मैं कोई चतुराई से बात नहीं कहता हूँ, चतुराई कोई मेरी आपके सामने चल भी नहीं सकती है। इस अंतिम समय में आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, प्रभु क्या अभी भी मैं पापी रह गया? तो भगवान पिघल गए, वो भगवान के चरणों में पड़ गया, भगवान का भक्त हो गया। भगवान ने उसके मस्तक पर हाथ रख दिया। बाली की कोमल वाणी सुनकर भगवान पिघल गए, पानी पानी हो गए, सिर पर हाथ रख दिया, पहले हाथ नहीं था। हमें तो एक बात समझ में आती है, ध्यान से सुनना, हमें तो एक बात समझ में आती है कि आपको हमको सबको ये हरदम ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का हमारे सिर पर हाथ है, इसलिए अपने को अनाथ नहीं मानना चाहिए। बाली ने तो अंत में समझा, अपने को तो अभी से ही समझ लेना चाहिए हमारे सिर पर भगवान का हाथ है। बालिका कितना प्रेम हो गया, कहा कि मेरा आपके चरणों में प्रेम हो। तो पापी से पापी व्यक्ति का कितना जल्दी कल्याण हो सकता है, इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, विश्वास करना चाहिए। ऐसा पूर्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, उसकी पहचान क्या है कि ऐसे प्रेमी पुरुष के दर्शन, स्पर्श, नाम उच्चारण से शरीर के अंदर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। कोई पूछे कि ऐसे पुरुष अभी संसार में है या नहीं, तो भाई लंबा चौड़ा संसार है, संसार में कमी तो है नहीं, तो क्या हम लोगों को कैसे मिले कि उत्कट इच्छा होने से मिले। मिलने की इच्छा जोरदार चाहिए, भगवान के मिलने में और उनके भक्तों के मिलने में केवल इच्छा की ही आवश्यकता है। आप रुपया की और स्त्री में तीव्र इच्छा कर लो, रुपया मिले स्त्री मिले, तीव्र इच्छा कर लो, नहीं मिलते। किंतु भगवान के मिलने की तीव्र इच्छा हो तो मिलने में कोई कठिनता नहीं है। देखो, रुपया नहीं मिलते, भगवान मिल जाते हैं, क्या बात है। रुपया जड़ है, वो हमारे इच्छा को, प्रेम को समझने की योग्यता नहीं रखता है। भगवान चेतन है, रुपया प्रेम के तत्व को कैसे जाने। भगवान प्रेम का तत्व जानते हैं। हम रुपयों को चाहते हैं, क्या उनमें भी हमसे मिलने की इच्छा होती है क्या? रुपया कभी हमको नहीं चाहते, किंतु भगवान सबको चाहते हैं। रुपये को आप ही चाहते हो, रुपया आपको नहीं चाहता, किंतु भगवान आपको चाहते हैं। आप नहीं चाहते हो तो भी चाहते हैं। इस दृष्टि से भी भगवान को चाहना चाहिए कि देखो, भगवान हमको चाहते हैं और हम भगवान को कैसे भूल रहे हैं। इस दृष्टि से भी अपने को समझना चाहिए। हमारे मिलने की तीव्र इच्छा होने से भगवान तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं। हम असमर्थ हैं, वे समर्थ हैं। रुक्मणी को तीव्र इच्छा हुई, हे भगवान जल्दी आओ, मेरा विवाह, मेरा लगन तय हो गया। ऐसे समय में आप आओगे तो लोगों की आपके अंदर भक्ति जगेगी। तो रुक्मणी के फेरे से पहले ही भगवान आ गए, क्या विलंब हुआ। द्रौपदी ने आर्त होकर के भगवान को बुलाया, हे भगवान अब मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता है, अब सर्वथा आपके शरण में हूं। तो भगवान को उस वस्त्र के रूप में आने में कितना समय लगा, हाजिर हो गए। भगवान इतने शर्त क्यों रखते हैं, तड़फड़ाते, हमारी तड़फन की प्रतीक्षा क्यों करते हैं। अरे वो भगवान भगवान है, जैसे गर्मी पड़ने से ही वर्षा होती है, बिना गर्मी पड़े वर्षा नहीं होती, ऐसे ही भगवान तड़फड़ाने में हमारी संसार की इच्छाओं का नाश होता है, उससे खुश होकर फिर भगवान आते हैं। और भगवान उसके लिए तड़फड़ाने लग जाते हैं। तड़फना भी कैसा होना चाहिए, जैसे जल के वियोग में मछली तड़फड़ती है। ये बात बोलते तो है, लेकिन मछली की भावना के अंदर डूब करके देखो, मछली को देखो कितनी तड़पती है। ऐसे तड़पना चाहिए। मछली तो एक जंतु है और वो जल एक जड़ चीज है। जल में यदि भगवान जैसा हृदय होता बहुत बढ़िया बात है भाई। जल में यदि भगवान जैसा हृदय होता तो तड़पती हुई मछली को कभी उठा के पकड़ लेता, जल स्वयं उछलकर मछली पर पड़ जाता। पर वो जड़ है, उसको पता नहीं है मेरे वियोग में मछली कैसे तड़पती है। आप भगवान के लिए ऐसा तड़फेंगे तो तो भगवान आपको उछल करके अपनी गोद में बैठाने के लिए तैयार है। भगवान के और भक्त और उनके भक्तों से मिलने की उत्कट इच्छा होनी चाहिए। क्योंकि भक्त तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु सबका कल्याण हो जाए, सबका कल्याण। ऐसे जो भक्त होते हैं भगवान ये नहीं सोचते कि सबके कल्याण करने की बात बोलता है, पर जो लोग कल्याण चाहते ही नहीं है उनके कल्याण की बात क्यों बोलता है, भगवान नाराज नहीं होते। कोई भक्त यदि बोलता है कि सबका कल्याण हो जाए तो उससे भगवान नाराज नहीं होते। क्यों? इसलिए नहीं होते कि इसकी भावना कितनी श्रेष्ठ है। मेरी जैसी भावना इसकी होगी, मैं भी तो सबका कल्याण चाहता हूं, अब वो नहीं चाहते हैं तो क्या करें। बल्कि भीतर ही भीतर भगवान उसको सराहते रहते हैं। ऐसा भगवान में प्रेम होना चाहिए। मेरा